अलंकार की परिभाषा। अलंकारो इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत शोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन पच्यते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। अलंकारों का महत्व। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीका सा लगता है जैसे कोई कामनी बिना श्रृंगार के और बिना आभूषणों के लगती है। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकारों की सहायता लेता है। भाव को स्पष्ट करने तथा दृश्य को प्रत्यक्ष कराने में अलंकारों की महती भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं अपितु वे भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व अर्थात काव्य की आत्मा तक मानते हैं। आचार्य केशव के शब्दों में भूषण बिन नबिराजई कविता वनिता मित अलंकारों के भेद। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं, यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखते हैं तो अलंकार समाप्त हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, वक्रोक्ति आदि। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। प्रमुख अलंकार है उपमा, रूपक, प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। अभ्यालंकार अभ्यालंकार शब्द और दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं। अलंकारों की परिभाषा, लक्षण एवं उदाहरण। वाला उपमा, जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से कोमलता के कारण करके की गई है, अतः उपमा अलंकार है। दूसरा रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ मुख उपमेय को चंद्रमा उपमान मान लिया गया था, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान मनो मानो जनो जानो शब्दों से होती है। चौथा यमक, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ नायक या पति। शब्द दो बार प्रयुक्त होता था, अर्थ अलग अलग है, अतः यमक अलंकार एक अन्य उदाहरण। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। श्लेष, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल। तश्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है तथा उसके तीन पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है उसके तीन अर्थ हैं। विभावना, जहाँ कारण के अभाव में विकार हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनुपग चले सुने बिनुकाना, वह यानी ईश्वर बिना पैरों को चलता और बिना कानों को सुनता है। कारण के अभाव में कारण होने के यही विभावना अलंकार है। अनुप्रास, जहाँ किसी वर्ण के अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया, भाग की आवृत्ति अनेक बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार। भ्रांतिमान, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता अन्य सुख यह कौन है। यहाँ नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ था, भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह, यहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ संदेश अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। अपहनुति, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपहनुति अलंकार होता है। जैसे मैं जो कहा रघुवर कृपाल, बंद न होई मोर यह काला। यह मेरा भाई नहीं काल है, यह उपमेय भाई का निषेध करते हुए उपमान काल की स्थापना की गया था, अपहनुति अलंकार है। व्यतिरेक, जहाँ कारण बताते उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सर्वरे तेहदेव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। 12वां प्रतीप, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे सीय मुख समता के में करे चंद वा पुरु रंग। सीताजी के मुख उपमेय की तुलना बेचारा इंद्र, बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है। असंगति, कारण और कार्य में असंगति होने पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, अतः असंगति अलंकार है। 14 दृष्टांत, यहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। यहाँ पूर्वार्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्ध में उपमान वाक्य है। इनमें सम्मान होना, सम्मान होना और जपदान करना, ये दो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अतः दृष्टांत अलंकार है। 15वां अर्थांतर न्यास, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहे उत्तन प्रगति का करी कसक कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ज्ञान अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। यहाँ श्याम रंग में डूबने पर भी उज्ज्वल होने से विरोध अपासित, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, विरोधाभास अलंकार है। वक्रोक्ति, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के औसत से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद है, काकुवक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकुवक्रोक्ति वहाँ होता है जहाँ वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ लगाता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ श्लेष के द्वारा वक्ता कथन का अर्थ भिन्न लिया जाता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कित हूँ वर्षो, चित चूर कहावत हम हैं हम तो, तहाँ जाहु जहाँ धन है सरसो। अन्योक्ति, अन्योक्ति का अर्थ अन्य के प्रति कही हुई उक्ति। इस अलंकार में प्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बध्यों आगे कौन हवाल। यहाँ भ्रम और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है और इसके माध्यम से राजा जय सिंह को सूचित किया गया है, अतः अन्योक्ति अलंकार है। मानवीकरण, जहाँ जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जागी वनस्पतियाँ अलुसाई, मुख धोती शीतल जल से। या फूलों का हंसना, कलियों को मुस्कुराना या वनस्पतियों को शीतल जल से मुख धोना मानवीय चेष्टा आता है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कराना। जब काव्य में कोई बात बहुत बड़ा चढ़ा कही जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, यहाँ लहरों का आकाश चूमता हुआ दिखाकर अतिशयोक्ति का विधान किया गया है। छंद परिभाषा, गांधी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद का महत्व, यदि व्याकरण गति का नियमन करता है तो छंद शास्त्र पद्य का नियामक है। पद्य रचना का ज्ञान छंद शास्त्र की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। छंद पद्य रचना हमें अधिक प्रभावित करती है। गद्य में जो शुष्कता होती है वह छंदबद्ध होने के कारण पद्य में नहीं होती। छंद पद्य रचना में स्थायित्व होता है, वे स्मृति में सुरक्षित हो जाती है। छंद के कारण काव्य में गीयता आ जाती है, अतः ऐसी रचनाओं का पुनः स्मरण शीघ्रता से किया जा सकता है। छंद पद्य रचना हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है, छंद रहित रचना हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। छंद के अंग, पाद या चरण, मात्रा और वर्ण, संख्या और क्रम, लघु और गुरु, गण, यति गति। चरण। छंद में प्रायः चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। मात्रा और वर्ण। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है और वाणिक छंद में वर्णों को। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा एवं दीर्घ स्वर की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। वाणिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। लघु एवं गुरु। छंद शास्त्र में ये दोनों वर्णों के भेद हैं। ह्रस्व को लघु वर्ण तथा दीर्घ को गुरु वर्ण कहा जाता है। ह्रस्व अक्षर का चिन्ह जबकि दीर्घ अक्षर का चिन्ह। लघु अ ई उ एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु गिने जाते हैं। गुरु आ ई उ रे ए आय ओ औ अनुस्वार विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होते हैं। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु माना गिना जाता है। संख्या और क्रम। संख्या में वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गण। तीन वर्णों का एक गण होता है। वाणिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या आठ है। इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र है, यमाता राच भान सलगा। इसके आधार पर गण उसकी वर्ण योजना लघु दीर्घ आदि की जानकारी आसानी से हो जाती है। जैसे यगण, उदाहरण यमाता, मगण मातारा, तगण ताराज, रगण राजभा, जगण जभान, भगण भानस, नगण नसल, सगण सलगा। यति गति तुक। यति का अर्थ विराम है, गति का अर्थ लय और तुक का अर्थ अंतिम वर्णों के आवृत्त। चरण के अंत में तुकबंदी के लिए समानोच्चरित शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कंत अंत वंत वसंत दिगंत आदि तुकबंदी वाले शब्द हैं जिनका प्रयोग करके छंद की रचना की जाती है। यदि छंद में वर्ण मात्राओं का सही ढंग से प्रयोग प्रत्येक चरण में हुआ हो तो वहाँ स्वतः ही गति आ जाती है। छंद के भेद। सामान्यतः छंद की मात्राओं या वर्णों की गणना की जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर छंद के दो भेद किए गए, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। वाणिक छंद। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वाणिक छंद कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, साधारण वे वाणिक छंद जिसमें 26 वर्ण तक के चरण होते हैं। दंडक। 26 अधिक वर्णों वाले चरण जिस वाणिक छंद में होते हैं उसे दंडक कहा जाता है। धनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, दंडक छंद का उदाहरण है। दूसरा मात्रिक छंद। मात्राओं की गणना का आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। यह गणाबद्ध नहीं होता, दो और चौपाई मात्रिक छंद है। प्रमुख छंदों का परिचय। चौपाई। यह मात्रिक समछंद है। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं होने चाहिए। उदाहरण निम्नवत है, जय हनुमान ज्ञान गुस सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा। दोहा। यह मात्रिक अर्ध समछंद है। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों में तुक भी होना चाहिए। जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। सुरठा। मात्रिक अर्ध समछंद है। इसके विषय चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होते हैं। तुक प्रधान तृतीय चरणों में होती है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद है। जैसे कुंद इंदु समते उमा रमन करुणायतन, जहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन नयन। रोला। मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में दो या गुरु या दो लघु वर्ण होते हैं। द्वितीय चरणों के तुक आवश्यक हैं। नित नव लीला ललित ठान गोलोक असिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। बरवय। यह मात्रिक अर्धसम छंद है जिसके विषम चरणों 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। सम चरणों के अंत में जगण या तगड़ होने से वैरवय की मिठास बढ़ जाती है। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, सरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। हरिगीत का। यह मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 पर होती है तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। जैसे कहते हुए जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। छप्पर। यह मात्रिक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाल के। 56वें उल्लाल के सम विषम चरणों का योग 15 तंतीर यानी 28 मात्रा वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे रोला की पंक्ति, ऐसे 4 चरण। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, उल्लाल की पंक्ति, ऐसे 2 चरण। सब भांत सुसंचित हो जहाँ, समता के सुखकर नियम। 8वां कुंडलियाँ, मात्र विषम संयुक्त छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। दोहे का 4था चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलियाँ का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। जैसे साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए पास त्रास कबहू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताय की गति सुन लीजिए, कह गिरधर कबीराय राम सौ मिल गए जाई, पाए विभीषण राजा राजलंकपति बन जाओ साईं। सवैया वाणिक समृत छंद 1 चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके कई भेद हैं, जैसे मत्तयंग मत्तगयंद सुंदरी सवैया, मदिरा सवैया, दुर्मिल सवैया, सुमुखी सवैया, किरीट सवैया, गंगोदक सवैया, माननी सवैया, मुक्तहारा सवैया, बाम सवैया, सुखी सवैया, महाभुजंग प्रयात तथा मत्तगयंद सवैया का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत है। सीख पगान जगातन में प्रभु जाने को आए बसे कोई ग्रामा, धोती फटे सी लपटी दुपटी और उपाव उपारण नहीं रहा सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत तीन दयाल कुधाम बदावन अपन नाम सुदामा। यहाँ कोश शब्द को ह्रस्व पढ़ा जाए तथा उसकी मात्रा को भी एक ही गिनी जाती है। मत्तम यंद सवैये में 23 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। 4 चरण तुकांत होते हैं। कवित्त वाणिक समृत छंद इसमें 31 होते हैं। 16-15 पर्यंत अंतिम वर्ण गुरु होता है। जैसे सहज विलास हास पियसी हुलास तजी 16 मात्राएं, दुखे निवास प्रेम पास पर यत है 15 मात्राएं। कवित्त को धनाक्षरी भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे मन हरण भी कहते हैं। गीतिका मात्रिक समछंद है, इसमें 26 मात्राएं होते हैं। 14-12 पर यति होती तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। जैसे मातृभू सी मातृभू है अन्य में से तुलना नहीं। द्रुत विलंबित वाणिक समृद्ध छंद से कुल 12 वर्ण होते हैं। नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ का क्रम रखा जाता है। जैसे न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। मालिनी वाणिक समृद्ध है, इसे 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 के बाद यति होती है। गणों का क्रम है नगड़ भगड़ भगड़ यगड़ यगड़ यथा। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निशदिन जिसके ही ध्यान में मैं बिताती। 14वां मंदाक्रांता माणिक समृद्ध छंद में 16 वर्ण भगड़ भगड़ नगण तगड़ तगड़ और 2 गुरुवर्ण के क्रम में होते हैं। जैसे 10 एवं 7 वर्णों पर होते हैं। जैसे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दिग युगल के सामने लाओ से ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषित सा हमारा। इंद्रवज्रा वाणिक समृत वर्णों की संख्या 11, प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरुवर्ण। जैसे होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म है जीवन का सहारा। उपेंद्र वज्रा वाणिक समृद्ध छंद है, ऐसे वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 11 होती है। गणों का क्रम है जगण तगण जगण और 2 गुरु। जैसे विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा।